आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ाकर तंबाकू के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने की पहल। लोकसभा में पारित हुआ केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025। गोरखपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम और कुश्ती ग्रीको रोमन चैंपियनशिप के समापन समारोह में होंगे शामिल। अयोध्या भ्रमण पर जाएंगे काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण के पहले चरण में तमिलनाडु से आने वाले दल। जिला प्रशासन ने की हैं व्यापक तैयारियां और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 के सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए दी जाएगी निशुल्क कोचिंग। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया। इसका उद्देश्य तंबाकू सेवन को हतोत्साहित करना है। एक रिपोर्ट।
इस विधेयक का उद्देश्य तंबाकू से बने उत्पादों और तंबाकू के विकल्पों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ाना है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 के तहत प्रति हजार सिगरेट पर 200 रुपए से 735 रुपए तक का उत्पाद शुल्क लगता है, जबकि इस विधेयक के तहत शुल्क प्रति हजार सिगरेट पर 2700 रुपए से 11000 रुपए तक बढ़ाए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा विधेयक में तंबाकू से बने उत्पादों पर भी उच्च उत्पाद शुल्क लगाने का प्रावधान है। जैसे चबाए जाने वाले तंबाकू पर शुल्क 25% से बढ़कर 100% हो जाएगा। वहीं हुक्का पर शुल्क 25% से बढ़ाकर 40% किया गया है। वहीं सिगार और सिगरेट में इस्तेमाल होने वाले तंबाकू मिश्रण पर शुल्क 60% से बढ़ाकर 325% करने का प्रस्ताव है। इस विधेयक का मकसद लोगों को तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाना है और उन्हें तंबाकू के सेवन के प्रति हतोत्साहित करना है। भूपेंद्र सिंह के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
केंद्र सरकार ने संचार साथी ऐप की बढ़ती स्वीकार्यता के बीच मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों के लिए ऐप को पहले से इंस्टॉल करने को अनिवार्य नहीं करने का फैसला लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नागरिक जब चाहें इस ऐप को हटा सकते हैं और इस ऐप का उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के अलावा और कोई कार्य नहीं है। इस बीच लोकसभा में कल संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष के जासूसी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संचार साथी ऐप से जासूसी न तो संभव है और न ही होगी।
संचार साथी पोर्टल की हमने शुरुआत की थी 2023 में और संचार साथी ऐप का प्रयोग हमने 2025 में शुरुआत किया। संचार साथी एक ऐसा ऐप है जिसके आधार पर जन भागीदारी के आधार देश की एक एक जनता और नागरिक अपने आप को सुरक्षित रख सकता है फ्रॉड से, स्टोलन मोबाइल से, अपने स्टोलन मोबाइल को रिकॉर्ड कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बहराइच जरवर रोड नई रेल लाइन का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। कल लोकसभा में उन्होंने बताया कि नई सीधी रेल लाइन के निर्माण से इस क्षेत्र को तेज, सुगम और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री योगी आज राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के तहत आयोजित कुश्ती ग्रीको रोमन चैंपियनशिप के समापन समारोह में भी हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री के गोरखपुर दौरे को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने उरुआ क्षेत्र के चचाई राम मठ जाकर यहां के स्मृति शेष महंत पंचाननपुरी को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री वहां से गोला तहसील क्षेत्र के मदरिया सिद्ध पीठ पहुंचे और वहां के दिवंगत महंत रामदास को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने मदरिया के दिवंगत राम निवास के परिजनों से भी मुलाकात की और उन्हें 4,12,000 रुपए के आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। साथ ही अधिकारियों को पीड़ित परिवार के सदस्यों को सभी संबंधित सरकारी योजनाओं का तत्काल लाभ देने का निर्देश दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने महानगर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में आज आयोजित होने जा रहे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह से जुड़ी तैयारियों का निरीक्षण किया। गोरखपुर से गिरीश चंद चौबे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं अरुण।
प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, पार्षदों, पूर्व पार्षदों और प्रत्याशियों के साथ गोरखपुर में बैठक कर SIR में सहयोग करने की अपील की। श्री योगी ने बैठक के दौरान कहा कि कार्यकर्ता 10 दिसंबर तक बूथों पर विशेष शिविर लगाकर पूर्णतः शुद्ध मतदाता सूची तैयार करने में मदद करें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण के पहले चरण के तहत तमिलनाडु से आने वाले दल अयोध्या का भी भ्रमण करेंगे। इसे देखते हुए अयोध्या में व्यापक तैयारियां की गई हैं। एक रिपोर्ट।
तमिलनाडु से आने वाले विशिष्ट अतिथियों के स्वागत और भ्रमण को लेकर अयोध्या में जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने श्रीराम ऑडिटोरियम का निरीक्षण किया और वहां मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कार्यक्रम को हर हाल में सुचारू और भव्य तरीके से संपन्न कराया जाए। अतिथियों के आगमन की तिथियां 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 दिसंबर निर्धारित की गई हैं। हर दिन अलग अलग समूहों का अयोध्या आगमन प्रस्तावित है, जिनके स्वागत के लिए मजिस्ट्रेट, पुलिस और संबंधित विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मेहमानों को अयोध्या के प्रमुख मंदिरों श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर दर्शन पूजन कराया जाएगा। इसके साथ ही श्री राम ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, जिनमें अयोध्या की परंपरा, संगीत और आध्यात्मिकता का प्रदर्शन किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
शिक्षा मंत्रालय की ओर से वाराणसी में चल रहा काशी तमिल संगमम काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने संबंधों को और मजबूती दे रहा है। तमिलनाडु से आए पहले प्रतिनिधिमंडल ने कल वाराणसी में कई गतिविधियों में भाग लिया। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
तमिलनाडु से काशी आए छात्र समूह ने गंगा स्नान किया और गंगा के विभिन्न घाटों के इतिहास को जाना। इस दौरान दल ने घाट पर स्थित प्राचीन मंदिरों में दर्शन पूजन किया। वाराणसी में दक्षिण भारतीय मंदिर कांची मठ को देखकर छात्रों का यह समूह काफी उत्साहित दिखा। नमो घाट पर छात्रों के लिए विशेष शैक्षिक सत्र का भी आयोजन किया गया। यहां छात्रों को तमिल भाषा, लोक कथाओं और दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक वैभव से परिचित कराने के लिए तमिल लोक गाथाएं सुनाई गयी। इस वर्ष कार्यक्रम की थीम तमिल करकलाम यानी तमिल सीखे रखी गयी है, जिसका उद्देश्य बच्चों को तमिल भाषा, लोक कथाओं और दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक वैभव से परिचित कराना है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
प्रदेश का समाज कल्याण विभाग PCS प्रारंभिक परीक्षा 2025 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए निशुल्क कोचिंग कार्यक्रम शुरू करेगा। यह विशेष प्रशिक्षण सत्र लखनऊ के छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के भागीदारी भवन में संचालित होगा। एक रिपोर्ट।
भागीदारी भवन के संयुक्त निदेशक आनंद कुमार सिंह ने बताया कि ये सुविधा केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक न हो और जो UP PCS प्रारंभिक परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण हो, उन्हें लेटरल एंट्री के माध्यम से कोचिंग में प्रवेश मिलेगा। आवेदन के समय प्रारंभिक परीक्षा प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और शैक्षिक प्रमाण पत्रों की प्रतियां जमा करनी होंगी। इसके अलावा 2000 रुपए की कौशन मनी जमा कर संस्थान में प्रवेश लिया जा सकेगा। दस्तावेजों की जांच के बाद प्रवेश प्रदान किया जाएगा। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
मौसम विभाग ने प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 दिनों के भीतर 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस के गिरावट की संभावना जताई है। इससे ठंड में और बढ़ोतरी होगी। विभाग के मुताबिक 9 दिसम्बर तक सुबह के समय प्रदेश में कहीं कहीं हल्के से लेकर मध्यम कोहरे की भी संभावना है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ाकर तंबाकू के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने की पहल। लोकसभा में पारित हुआ केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025। गोरखपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम और कुश्ती ग्रीको रोमन चैंपियनशिप के समापन समारोह में होंगे शामिल। अयोध्या भ्रमण पर जाएंगे काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण के पहले चरण में तमिलनाडु से आने वाले दल। जिला प्रशासन ने की हैं व्यापक तैयारियां और PCS प्रारंभिक परीक्षा 2025 के सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए दी जाएगी निःशुल्क कोचिंग। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।